ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरे यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम्। हरे कृष्णा। अखिल रस सिंधु दीन बंधु दया सिंधु भक्तवत्सल भक्त वांछा कल्पतरु रास रासेश्वर राज राजेश्वर गोपी प्राण धन नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र की महती कृपा करुणा से श्री वृंदावन धाम में श्री कार्तिक मास में श्री श्री राधा श्याम सुंदर के प्रांगण में और दीपावली जैसे सु अवसर में भागवत कथा के माध्यम से जीवन का सर्वोच्च लाभ भगवत प्रेम भगवत सेवा प्राप्ति अर्थम हम आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह हम सबका परम सौभाग्य है। हमें लगता है कि देवता भी हमारे इस सौभाग्य को देखकर तरस रहे होंगे। श्री वृंदावन धाम में और ऐसा पवित्र स्थल में और विशेष रूप से इतने संतों के मध्य बैठकर भगवत चर्चा का सौभाग्य प्राप्त करना यह हम सबके लिए परम सौभाग्य का द्योतक है, परम सौभाग्य का सूचक है। कथा प्रसंग के अनुसार हमें कहा गया है दामोदर अष्टकम का यह अंतिम श्लोक और खास करके हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री प्रहलाद श्री भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी की आज्ञा है कि इसी श्लोक की थोड़ी बहुत व्याख्या करनी है। नमस्ते स्तु धामने स्फुरदीप्ति धामने त्वदीयोदरायथ विश्वस्य धामने नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाय नमो नंत लीलाय देवाय तुभ्यम। आइए इस श्लोक के पाठ के साथ आज के प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने त्वदीयोदरायथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियाय नमो नंत लीलाय देवाय तुभ्यम्। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम् लसत कुंडलम गोकुले भ्रजमानम् यशोदा भियो लोकला धवमानम् यशोदा भियो लोकला धवमानम् परामृष्टमत्यंत तोदृत्य गोप्या नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुर दीप्ति धाम्ने त्वदीयोदरायथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियाये नमो नन्त लीलाय देवाय तुभ्यम् नमो नन्त लीलाय देवाय तुभ्यम् सत्यव्रत मुनि ने 8 श्लोकों में भगवान की अनेक लीलाओं का वर्णन किया है। सबसे आश्चर्य की बात यह है एक ही इस अष्टक में अनेक रसों का समाहार हुआ है, अनेक रस इसमें है। दास्य भाव भी है, शांत भाव भी है और वात्सल्य भाव भी है, श्रृंगार भाव भी है। सारे रसों का समाहार मानो इसमें ही है। सत्यव्रत मुनि परम आश्चर्य परम आग्रह के साथ भगवान की उन दिव्य लीलाओं का आस्वादन करते हुए इस श्लोक की रचना करते हैं। अब यदि बड़े धीर मन से इस श्लोक पर सोचेंगे, चिंतन करेंगे, सारे रस आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। सारे रस, सारे रस। उदाहरण के रूप में शांत भाव है। शांत भाव में क्या हो सकते हैं? इस लीला में जिन्होंने किरदार निभाया है पार्टिसिपेंट, शांत भाव के कौन हो सकते हैं? इसी लीला में, भगवान दामोदर लीला में शांत भाव उखल है, वृक्ष है, शांत है। नलकुवर मणिग्रीव जब इनका उद्धार हो जाता है और ये प्रार्थना करते हैं वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, कौन सा भाव होगा? दास्य भाव होगा, दास्य भाव होगा। सखा आकर जब श्री कृष्ण को देखते हैं, उनके साथ व्यवहार करते हैं, कौन सा भाव होगा? साक्ष्य भाव होगा। माँ यशोदा ने टाइट करके बांधा, कौन सा भाव होगा? वात्सल्य भाव होगा। नमो राधिकाए त्वदीय प्रियाए, कौन सा भाव होगा? श्रृंगार माधुरी है। सारे भावों की समष्टि है ये। एक एक श्लोक पर अगर विचार किया जाए, सनातन गोस्वामी जी ने इसी श्लोक की व्याख्या में जो टीका लिखी है उस टीका का नाम है दिग्दर्शनी टीका। आप लोगों में से अनेक भक्त पढ़े होंगे दिग्दर्शनी। दिग्दर्शनी माने एक दिशा निर्देश करते हैं, एक समझाने का एक मार्ग बताते हैं कि इसी मार्ग से श्लोक को समझा जा सकता है। और इस श्लोक का जो राग है, इस राग को कहते हैं, सनातन गोस्वामी लिखते हैं भुजंग प्रयाता। भुजंग जानते हैं, भुजंग माने सर्प, जो भुज ऐसे ही चले, अपने पेट के भार से चले, भुजंग उसको कहते हैं। और प्रयाता माने जैसे सांप बहुत जल्दी जल्दी चले। सांप कैसे चलता है? सांप कभी ऐसे सीधा नहीं चलता। सांप कैसे चलता है? ऐसे ऐसे। अब देखिए श्लोक को देखिए, नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुर दीप्ति धाम्ने त्वदीयोदरायथ विश्वस्य धाम्ने, एकदम ऐसे ऐसे हो रहा है, नहीं हो रहा है? आचार्य लोग कितने गहराई पे देखते हैं, भुजंग प्रयाता, सांप चल रहा है, कोई स्थिरता नहीं, एकदम ऐसे 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 चल रहा है। सो अनेक श्लोकों की व्याख्या तो हो चुकी है और पूर्व पूर्व जितने भक्त आए हैं सबने व्याख्या करी है। हमारे भाग्य में अंतिम श्लोक है। और आप लोग सभी जानते हो ठंड मौसम में हमें लगता है कि आज ही ठंड पड़ी है ज्यादा, है नहीं? तो शास्त्र के अनुसार शीत ऋतु का प्रारंभ हो रहा है और सर्दियों में कथा कहने में सुनने में बड़ा आनंद है। क्यों? गर्मी हो तो पंखा चले घर 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 होकर के, और बैठने में कम से कम दो दो फीट की जगह छोड़नी पड़े, और शीत ऋतु आ जाए तो जितने सट करके बैठोगे उतना आनंद है। हाँ, जगह की कम नहीं पड़ेगी, जगह जगह कितनी, इतनी छोटी जगह में बहुत से लोग बैठ सकते हैं। सब बहुत ही शुभ मुहूर्त है, दीपावली का मुहूर्त, दीपावली का दिन है, घर घर में आज प्रकाश है। दिवाली भारतीय परंपरा में, हमारी संस्कृति में दीपावली उत्सव को एक बृहत उत्सव के रूप में मान्यता प्राप्त है। केवल हिंदू धर्मावलंबी नहीं है, जैन वाले भी मनाते हैं, बुद्धिस्ट भी मनाते हैं, सभी लोग ये दीप उत्सव को मनाते हैं। और वेद माता कहती है, असतो मा सदगमया, गाइए, असतो मा सदगमया, हाथ जोड़ के गाइए, असतो मा सदगमया, मृत्योर मा अमृत गमया। और एक छूट रहा है, तमसो मा ज्योतिर्गमया। बृहद आरण्यक उपनिषद की ये पंक्ति है। बृहद आरण्यक उपनिषद एक विशाल उपनिषद है, उसमें ये मंत्र दिया गया। हम समझते हैं कि दूसरे बल्ले का ये कोई 2-3-28 यही होगा क्रम। सबसे पहले यहाँ शिष्य छात्र और गुरु दोनों मिल करके प्रार्थना करते हैं भगवान से। आइए हम श्याम सुंदर से भी यही प्रार्थना करें। असतो मा सदगमया, हे श्याम सुंदर, हमें असत से उद्धार कर सत की ओर ले जाइए। तमसो मा ज्योतिर्गमया, हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण बलराम, हमको अज्ञान अंधकार से ज्ञान की प्रकाश की ओर ले चलिए। मृत्योर्मा अमृत गमया, हे श्याम सुंदर, इस मर्त्य जगत से उद्धार करके हमें अपना गोलक ले चलिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। असतो मा सदगमयः, असत है जगत, असत, इसको समझाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। असत उससे कहते हैं मित्रों जो अपनी सत्ता को कायम नहीं रख सकता, हर पल बदल जाए, एक क्षण की भी निश्चितता नहीं रहे, उसको असत कहते हैं। असतो मा सदगमयः, हे प्रभु हमको असत में मत रखिए, हमको सत्य की ओर ले चलिए, हमारे मार्गदर्शक बनिए। मानो दीपावली के दिन ये प्रार्थना भक्त भगवान के चरणों में करता है। सायंकाल के समय सिंपल थोड़ी सी ये दिया बत्ती दिखा देने से कोई बहुत ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है। मान्यता के अनुसार रावण पर विजय प्राप्त करके असत पर सत्य की विजय को दिखाकर श्री राम जी अयोध्या के लिए वापस आते हैं, उनके स्वागत पूरा भारतवर्ष करता है। इसलिए घर घर में ज्योति को जलाकर, प्रदीप को जलाकर के भगवान राम का स्वागत किया जाता है, दीपावली है। पर वस्तुतः तमसो मा ज्योतिर्गमय, हे प्रभु आप हमको इस तमसाच्छन्न देश से उस प्रकाशमान दिशा की ओर, प्रकाशमान देश की ओर ले चलो। और यह संसार तमसाच्छन्न है, अंधकार है, यहां ज्ञान कहां है? ज्ञान का चिन्ह भी नहीं है। जिस दिन जीव माया के कब्जे में आया है तब से अंधकार में ही पड़ा हुआ है। तब से अंधकार है, घनघोर अंधकार है। इसलिए ये दिवाली इस दिन मनाई जाती है, अंधकार रात्रि के दिन है, ये रात्रि है। हमारी जिंदगी की रात्रि तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक भगवान की कृपा का प्रकाश हमें सहायता करने के लिए अवतरित नहीं होगा। इसलिए भक्त शिष्य प्रार्थना करते हैं, प्रभु मृत्युर मां अमृत का मया, कितना दिन हम मरेंगे जिएंगे, कितने दिन, कोई हिसाब नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। ये संस्कृति सागर है प्रभु, है श्याम सुंदर, इसकी सीमा कहीं और छोर नहीं है। कब से मैंने भूला और कब से संसार आया है प्रभु, कब तक हम यहीं पर पड़े छटपटाते रहेंगे। आप आओ और हमारे हाथ को पकड़ करके ले जाओ, ये प्रार्थना है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मानो शिष्य छटपटा करके कहता है, प्रभु बस बहुत हो गया, अब हम रहना नहीं चाहते, पर मुश्किल यह है अब हम यहां से जाना नहीं चाहते। ईमानदारी से छाती पर हाथ रख करके कहो, कितने जाना चाहते हो? मैं ही जाना नहीं चाहते हो, तुमको क्या कहें? मुश्किल तो यहीं पर है, यहीं पर है। अमृत तत्व के अधिकारी बनना, सतमार्ग के उस राही बनना और असत का त्याग करना, ये वेद मंत्र है। आज ये दीपावली है तो भक्तों आइए सब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये अंधकार में रहना बहुत हो गया, एक बार आपके कृपा हमारे जीवन में अवतरित हो जाए और आज का दिन हमारे जीवन के सच्ची दिवाली बने, सच्ची दिवाली यही है। भगवान के कृपा का आह्वान करना, यही है दिवाली। जब तक कृपा नहीं है तब तक जीवन क्या है? बेकार है, बेकार है। सत्यव्रत मुनि इसी श्लोक में भगवान की कृपा की याचना करते हैं, नमस्तेस्तु धामने स्फुरधिप्ति धामने त्वदीयोदरायथ विश्वस्य धामने नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम मधुरेण समाप्यते। दिग्दर्शनी टीका में सनातन गोस्वामी मधुरता के साथ, माधुर्य रस के साथ इस पद रचना को समाप्ति की ओर बढ़ा रहे हैं। वे कहते हैं सबसे पहले पहले श्लोकों में तो प्रणाम करते हैं दामोदर को, प्रणाम करते हैं, पर इसी श्लोक में विशेष करके इसी श्लोक में तोड़ तोड़ करके, खंड खंड करके एक एक वस्तु को प्रणाम करते हैं, मानो परिकर को, परिवार के, भगवान के अंगों को, एक एक वस्तु को सत्यव्रत मुनि प्रणाम करते चले जा रहे हैं। पहले लाइन में देखिए, नमस्तेस्तु दामने, हे प्रभु आप जिस रस्सी से बंधे पड़े हो उस रस्सी को मैं नमन करता हूं। वो रस्सी कितनी भाग्यशाली नहीं होगी, कितना भाग्य होगा उस रस्सी का जो भगवान के दामोदर के पेट पर शोभायमान हो रही है वो रस्सी। नमस्तेस्तु दामने, हे दामने, हे दाम, हे रस्सी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। कैसे वो दाम है? स्फुरधिप्ति धामने, वो तेज पुंज का आश्रय है वो रस्सी। वो रस्सी सामान्य रस्सी नहीं है, सामान्य रस्सी से कैसे भगवान बन सकते हैं? ना, नहीं हो सकता। मोबाइल थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, ये तो मौत का दूत है, अभी कैसे जाओगे? मृत्यु दूत के साथ कोई भी यमराज जी के यमदूतों के साथ कोई वैकुंठ जाएगा क्या? कोई नहीं जाएगा, मेरी माताओं, यमदूतों के साथ कोई नहीं जाएगा। आप कहोगे चलो भाई थोड़ा वैकुंठ घूम के आ जाते हैं, ना 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 ना, ये बात ठीक है, वैसे ही होगी जैसे रात्रि को साथ लेकर के सूर्य की ओर चलना है, नहीं हो सकता, दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते हैं। नमस्तेस्तु धामने स्फुरधिप्ति धामने, हे रस्सी आप एक ज्वलंत तेजपुंज हो। क्या है वो? सनातन गोस्वामी कहते हैं ये तो साक्षात ब्रह्म पुंज है, ये ब्रह्म पुंज है, ये रसी, ये क्या है? सनातन गोस्वामी कहते हैं तथा इससे बंधन संभवे स्फुरदीप्ति धामने, स्फुरदीप्ति धामने आई बो डाउन टू दिस मैग्निफिसेंट रूप सोर्स ऑफ डेजलिंग लाइट व्हिच बाइंड्स योर बेली दिस इमेज इवोक्स द क्विंटेंस ऑफ ब्राह्मण। ये साक्षात ब्रह्म ज्योति है। आप लोग सभी उस घटना को जानते हो, भगवान श्री कृष्ण मटकी तोड़ करके, वो दधि मटका तोड़ करके भागते हैं और यशोदा के हाथों से पकड़े जाते हैं। माँ यशोदा को देखकर, माँ यशोदा की छड़ी को देखकर के कृष्ण अतिशय भयभीत हो जाते हैं। माँ ने देखा बच्चा बहुत डरा हुआ है, ऐसे छड़ी को लेकर रहना वो ठीक नहीं है, हो सकता है कहीं भाग जाएगा, बंदर काट देंगे, कुत्ते काट देंगे, नोच डालेंगे, इसलिए बांध देना उचित रहेगा। यशोदा भी बांधती है भगवान श्री कृष्ण के हित के लिए, उनके पीछे, उसके पीछे और कोई कारण नहीं मित्रों। पर श्री कृष्ण को जब बांधने चलती है यशोदा, घटना क्या हुई? श्री कृष्ण बंधे नहीं। क्यों नहीं बंधे, क्या कारण था? अद्भुत कारण था, उसके पीछे भी एक अद्भुत कारण। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि भाई ये श्री कृष्ण बंधने वाले नहीं है। क्यों नहीं बंधे गए? बोले साक्षात विश्व है। जैसे विश्व की कोई सीमा नहीं है, ऐसे असीम वो अपरिसीम प्रभु को ये परिच्छन्न रस्सी कैसे बांध सकती है? मित्रों माताओं, ये महीना दामोदर का मास कहलाता है, ये मास बंधन का मास कहलाता है। ब्रज में एक संत थे, वो तो अभी नहीं है, हमारे आश्रम के ये सामने पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा थे, वो कहते थे ये मास परिश्रम का मास है, ये मास भक्तों का मास है, ये मास भक्ति का मास है। यदि कोई व्यक्ति केवल दामोदर लीला का ही पठन पाठन करे, उसके जीवन में पूर्णता हो जाएगी। कैसे? सोमातु स्विन्न गात्राया विश्रस्त कबर स्रज दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपया आसित स्वबंधने। सोमातु स्विन्न गात्राया विश्रस्त कबर स्रज दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपया आसित स्वबंधने। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मां के परिश्रम को देखा। क्या देखा? अपने मां के परिश्रम को देखा। मां परिश्रम करती थी, क्या प्रमाण है? स्व मातुः सुन्न गात्रायाः, उनका शरीर, उनका वदन पसीने से लथपथ हो चुका था। विश्रस्त कवर सर्ज, वो वेणी में, उस जुड़े में फूल गूंथे हुए है या नहीं है, उसका कोई ख्याल नहीं था। ये वैराग्य का एक सूचक है। जहां वैराग्य है वहां ज्ञान है, जहां ज्ञान है वहां वैराग्य है मेरे प्रभु। तो भगवान श्री कृष्ण देखते हैं, किसको देखते हैं? अपनी मां को देखते हैं, और किसी को नहीं देखते, अपनी मां को देखते हैं। जो मां उनको बांधने के लिए जिद्दी पकड़ी हुई है, स्व मातुः स्विन्न गात्रायाः। मित्रों इसी श्लोक में, इसी शब्द में कितना अर्थ देखिए, स्व मातुः, अपनी मां को देखा। किसको देखा? अपनी मां को देखा, किसी इतर व्यक्ति को नहीं देखा। इसका ध्वनि यही है, जब तक कृष्ण का कोई निजजन नहीं होगा, कृष्ण के साथ अपनत्व को नहीं करेगा, अपनापन नहीं जोड़ेगा, तब तक कृष्ण की कृपा मिलना दुरूह है। कृष्ण कृपा को कोई आकर्षण करना चाहता है, मेरे मित्रों पहली शर्त यही है, कृष्ण को अपना बनाना पड़ेगा। त्वमैव माता च पिता त्वमैव, त्वमैव बंधुश्च सखा त्वमैव। मंदिर में आकर खूब ताली बजाकर गाते हैं, प्रभु आप तो मेरे हो, आप तो मेरे हो, आप तो मेरे हो। घर पे जैसे जाकर बंदा पहुंचता है, पत्नी पूछती है, अरे पत्नी को, हाय डार्लिंग, सो नाइस, मैं तुम्हारा ही हूं, अरे तुम तो अभी मंदिर में श्याम सुंदर के सामने कह रहे थे तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें, अरे भाई ये सब प्रवचन में चलता है उसके प्रति ध्यान मत दिया करो, मैं 100% तुम्हारा हूं। कृष्ण कहते हैं मेरे से ये ठगी नहीं चलेगी, कभी नहीं चलेगी। जिसने काय मनो वाक्य से मुझे ग्रहण किया है, तुम यदि 100% मुझे ग्रहण करोगे मैं 100% तुम्हारा हो जाऊंगा। ये उनकी शर्त है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सो मातु हो, लेकिन समस्या यही है जीवन में 50 साल 55 साल हो गए फिर भी मैं और मेरा, मैं और मेरा। कृष्ण को तो हम रखते हैं पर साइड में रखते हैं, मैं और मेरा, मैं मोर, मैं और मोर तोरते माया जय विधि के, क्या है वो, जही बस कीन है माया निकाया, ऐसा कोई ऐसी कोई पंक्ति है रामचरित मानस में। तुलसीदास लिखते हैं मैं और मोर तोरते माया जही बस कीन है जीव निकाया। ये माया क्या है, ये अहम तो और ममत्व तो है, मैं और मेरा इतना ही है, इसी को माया कहते हैं। ये माया के दो प्रोडक्ट है अहमता और ममता, मैं और मेरा, मैं हूं और मेरे संबंधी, बैंक बैलेंस, परिवार, धन, बिल्डिंग, ये सब मेरे ही है। कैसे कृष्ण मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। कृष्ण कृपा की पहली शर्त है मेरे मित्रों सो मातु हो, कृष्ण का अपना हो जाना। उड़ीसा के कितने लोग यहां बैठे हो, खूब कम लोग हैं। जब हम बच्चे थे उड़ीसा के पुरी के महान भक्त थे, उनका नाम था निमाई हरिचंदन। निमाई हरिचंदन की ये नित्य नियमित ये क्रिया थी, जगन्नाथ मंदिर में आते थे, एक भजन सुनाते थे। एक भजन वो गाते थे हे जगन्नाथ, भक्तों को कहते थे अपना लोकर डाक से सुनई ना सुनी वसे तोहर डाक। अरे भक्तों ये जो जगन्नाथ के पास तुम आते हो ये केवल अपने लोगों की पुकार सुनता है, ये तुम्हारी पुकार नहीं सुनेगा। आश्रय लया भजे तारे कृष्ण नाही तेजे आर सब मरे अकारण, सब मरते। इसलिए आदो गुरुवाश्रय, जो भगवान के पृष्ठजन है निजजन है उनके आश्रय के बगैर ये भजन सिद्ध नहीं होता। जब बचपन से जन्म लेते हैं माँ पिता सिखाते हैं परिश्रम करो परिश्रम करो खूब मेहनत करो तभी फल मिलेगा। क्या मेहनत करने से फल मिल जाएगा, हम आपसे पूछते हैं मेहनत करने से मिल जाएगा, हाँ जी क्यों नहीं मिलेगा। यहां तो कृष्ण परिश्रम को देखते हैं। सोमातु हो स्विन्न गात्रा यहां विश्रस्त कवर स्रज दृष्टवा परिश्रमम, कृष्ण की आंख दिन रात खुली रहती है। अब देखो हमारी आंखों में तो पलके हैं पर जगन्नाथ जी की आंखों में कहीं पलके हैं न, निष्पलक नेत्रों से निर्निमिष नेत्रों से वो निहारते रहते हैं दिन रात, पलके नहीं है। केवल मेरी माताओं परिश्रम करने से काम सफल नहीं होने वाला है, एक दूसरी कंडीशन दूसरी शर्त चाहिए, क्या है, हाँ जी नो पद्धति, केवल परिश्रम से काम नहीं चलने वाला है। खूब पसीना बहाओ, फावड़ा लेकर के यहां से उड़ीसा तक मिट्टी खोदते हुए चले जाओ, तुमको पानी नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलेगा। खूब परिश्रम किया पसीना बहाया पानी क्यों नहीं मिला, अरे बेवकूफ तुमने मेहनत तो कर दी पर पहली शर्त जो पद्धति तुमने नहीं अपनाई। सबसे पहले कुप खोदने वालों के पास जाओ, उसे माटी की परीक्षण कराओ, माटी की परीक्षा कराओ कि भाई यहां पर कम खोदने से पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा। यदि वो कह देगा हां भाई यहां 10 फीट गहराई पे पानी है, फिर फावड़ा लेकर के वहां 2 घंटे मेहनत कर दो तो पानी झरझर झरझर करके वहां बहने लगेगा। इसलिए मेरे मित्रों परिश्रम तो चाहिए, लेकिन परिश्रम से पहले पद्धति उपाय चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं शक्तुम एवाप तुम उपायतः, तुम उपाय करके उस प्रभु को प्राप्त कर सकते हो। तो पहला उपाय क्या है, स्वमातु हो, भगवान श्री कृष्ण का अपना बन जाना। पर अपना बनने के लिए क्या चाहिए शर्तें, मैं और मोर तोर ते माया, इसको छोड़ना पड़ेगा। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। इसलिए स्वमातु हो सुन्न गात्राया विस्रस्त कवर स्रजा, फूल बिखरे हुए हैं पसीने से लथपथ मां को देखकर, दृष्ट्वा परिश्रमम, भगवान श्री कृष्ण की आंखें खुली हैं, तुम अंधेरी कोठरी में क्या कर रहे हो, सब श्याम सुंदर दिख रहे हैं, तुम्हारा कितना अपनापन है, कितना अपनापन है, हे राम मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो अनाथ हो गया हूं। एक बाबा जी इसे कह रहा था, बोला भाई मैं तो अनाथ हो गया हे राम लाला, मेरे पास कुछ नहीं है। बाबा जी कहा बैंक में जो बैंक में 20 लाख बैलेंस है वो कहां जाएगा, उसको रामलाला खूब देख रहा है। यहां तो कहता है कुछ नहीं है, वो बैंक बैलेंस है किसका। इसलिए कार्य सिद्ध नहीं होता है, नहीं होगा, परिश्रम तो होगा। असुरों ने परिश्रम नहीं किया क्या, आप लोग सब जानते हो वो सागर मंथन लीला, देवताओं ने जितनी मेहनत करी असुरों ने ज्यादा मेहनत करी। बोले हम ब्राह्मण है, हम तो ब्राह्मण है, कश्यप के दायाद है, हम पूंछ पकड़ेंगे, अरे हम तो सामने पकड़ेंगे। वासुकी के जहर को पीते रहे, मंथन करते रहे, लेकिन उनके हाथ में अमृत लगा क्या, क्यों नहीं लगा। मोहिनी आई और उनको धोखा देकर के सब अमृत पिला दिया देवता लोगों को। इसलिए यद्यपि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यद्यपि असुरों ने परिश्रम खूब किया, क्योंकि श्री कृष्ण की शरणागत होना यह उपाय उनको पता नहीं था, इसलिए फल से हाथ धोना पड़ा, फल उनके हाथ में नहीं लगा। इसलिए मित्रों दिवाली के दिन ये श्लोक से ये शर्त ये शिक्षा हमें मिलती है, केवल परिश्रम से काम नहीं बनेगा, पद्धति अपनानी पड़ेगी, उपाय अपनाना पड़ेगा। उस उपाय का प्रथम चरण है भगवान श्री कृष्ण का होना पड़ेगा। कैसे होंगे, आदो गुरुवाश्रय, गुरु के चरणों में माथा को बेचना पड़ेगा। अभी इसी समय रूप गोस्वामी कहते हैं कामादि नाम कति न कति धाम पालिता दुर्निर्देशाम तेसाम मई न जाता करुणम नत्रपानोपशांति उत्सृज्य एतान अथ यदुपते सांप्रतम लब्ध बुद्धि त्वम आयात शरणम माम नियुक्ष आत्मदास्ये। रूप गोस्वामी ने कहा बस बहुत हो गया, अब और आगे प्रतीक्षा नहीं करेंगे। हे काम मैंने तुम्हारी हर आज्ञा का पालन किया, पर धिक्कारे मुझे, ना तो मुझे लज्जा आई ना तो तुम्हारी करुणा मुझ पर हुई, ना मई करुणा न त्रपा नोप शांति, जीवन हा हुताशमय हो गया, जलता रहा, मुझे शांति नहीं मिली। अथ भगवान श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं, संत रूप गोस्वामी कहते हैं उत्सृज एथान अथ यदुपते सांप्रतम लब्ध बुद्धि ही, यहां बुद्धि का प्रयोग हुआ है, बुद्धि विचार करने की शक्ति रखती है, बुद्धि से विचार करना चाहिए। अरे बुद्धि तू आज तक संसार में जिसको अपनाया कौन तेरा बना, कोई नहीं बना, बेवकूफ लोग कहते हैं 7 फेरे लेंगे, अरे एक फेरे एक महीना के लिए नहीं चलता, ये 7 फेर किसने देखा है, जन्म जन्म के 7 हिरे तुम्हारा हमारा 7 फेरे, एक जिंदगी में 1 फेरे भी नहीं चलता। सारा शास्त्र अथ एतान उत्सृज्य सांप्रतम लब्ध बुद्धि, मेरी बुद्धि गड़बड़ हो गई थी, सब बेकार हो गया था, अब प्रभु मेरे पास मेरी बुद्धि आ गई, अथ उत्सृज्य एतान सांप्रतम, अभी 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 विलंब नहीं करूंगा, छोड़ दिया सब। तुम आयात अभयम चरणम माम नियुक्ष आत्मदासे, हे अभय चरण, हे श्री कृष्ण, हे जगत गुरु श्री प्रभुपाद, आप हमें अपने दास के रूप में स्वीकार करो। रूप गोस्वामी कहते हैं त तब परिश्रम करें, करने से फिर काम बनेगा। सोमातु स्वीन गात्राया, पर माँ ने क्या किया, इतने भी मेहनत करी फिर भी सफल नहीं हुआ। माँ खूब परिश्रम करती ही करती। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं टीका में, माँ जब बांधने का प्रयास कर रही थी, पर अपनी जूड़ा से जो बेणी थी, गाय को जिस रस्सी से बांधते हैं उसको लेकर के आई, और भी आजू बाजू में जो रस्सी पड़ी हुई थी सारी रस्सी से बांधने का प्रयास किया, पर नटनागर श्याम सुंदर वो बंधे नहीं है। दोपहर तक ऐसे ही नाटक चलता रहा। गोकुल की सब गोपियां एकत्रित होने लगी, सब आकर के देखने लगी ये क्या मजाक उड़ रहा है, क्या मजाक हो रहा है। तो कुछ कुछ गोपियां कहने लगी, चक्रवर्ती जी भाव देते हैं, ततश्चाहो, तब कहते हैं अहो, आश्चर्य, ओ हो हो हो, ततश्चाहो मणिमय नाति दीर्घ किंकणी वेष्टित अवलग्न श्यास्य गृहस्थित सर्वदाम भीरपि तद बंधनम न निष्पद्यते। अब देखो देखो, ये छोटा सा बालक, छोटी सी कमर, जिस कमर पर मणिमय ये लड़ियां कमर पट्टी बंधी हुई है, छोटा सा बालक, छोटी सी कमर, छोटी सी करधनी, पर सारी रस्सियां इकट्ठी हो गई हैं, पर ये रस्सी उसको बांधने में समर्थ नहीं हो पा रही है। गृहस्थित सर्वदाम भीरपि तद बंधनम न निष्पद्यते, उनका बंधन संपादन नहीं हो पा रहा है। तदस्य शुभम, ये बहुत अच्छी बात है, जिसके ऊपर बंधन नहीं चल रहा है वो बहुत अच्छा है, इसलिए ब्रह्मचारी जीवन में कोई बंधन नहीं। तदस्य शुभम, गोपियां कहती है, भाई गोपियां परम प्रमाण है, वो कहते हैं तदस्य शुभम महाशुभम, बहुत अच्छा है, इस बालक के भाग्य में बंधन लिखा नहीं है। यो बालकस्य ललाट पत्रे विधात्रा बंधनम लिखितम इति अनुमियते तदित उद्यमात प्रिय सखी यशोदा विरम्यताम। अरे प्रिय सखी यशोदा, इस बालक के भाग्य में विधाता ने, छठी देव ने बंधन लिखा नहीं है, इसलिए बांधने का प्रयत्न मत करो, छोड़ दो इस प्रयास को। विधात्रा न लिखितम विरम्यताम, अब तुम बंद करो। पुरंधरी जन प्रयोधित स्यापि यशोदा अद्य संध्या पर्यंतम अपि एतद ग्रामस्थैरपि दामभीर ग्रतिथै एतद उदरस्य अवधीर अधिजिगिसमीडिय इति प्रौढवादस्तया पुत्राभिमत्या परमेश्वर बंधन उद्यमे ही अपरित्यक्ते सति भक्त भगवतोर मध्ये भक्त हठ एव तिष्ठेत। संध्या पर्यंत यशोदा ने बांधने का प्रयत्न को जारी रखा। संध्या पर्यंतम अपि एतत ग्रामस्थैर अपि, बोले अरे गोपियों क्या तमाशा देख रहे हो, जाओ गोकुल में जितनी रस्सियां हैं सब लेकर के आओ, नंद रानी की आज्ञा कौन टाल सकता है। सब भागी भागी जाती है, फिर आ जाती है, फिर देखती है, फिर रस्सी को लपेटती है यशोदा एक से के साथ जोड़ करके, दुई अंगुल उनम अभूत, दो अंगुल छोटी। हाँ, तम बालकम मर्त्यलिंगम, अब यशोदा सोचती है ये बालक है तो मेरा ही है, मेरी कोख से पैदा हुआ है, उसको मैं बांध करके ही रखूंगी। मर्त्यलिंगम अधोक्षजम गोपी कोलो खले दामना बबंध प्राकृतम यथा, जैसे छोटे बालक को मां बांध देती है ऐसे ही अपने प्राकृत शिशु समझकर यशोदा उसको बांधने का प्रयत्न करती है। संध्या पर्यंतम अपि एतद ग्रामस्थैर अपि दामभि ग्रथितैर एतद उदरस्य अवधि अधिजिगमिषणीयः, हाँ जानना चाहिए इसका पेट कितना बड़ा है। हाँ, हमारे जगन्नाथ का पेट कितना बड़ा है कौन कहेगा, कितना बड़ा है, क्योंकि मां ने देखा है। खम वायुम अग्नि सलिलम महिम च, यशोदा को जब भगवान ने विश्व रूप दिखाया सब यशोदा देखती थी, अरे छोटा सा मुख मेरे लाल, छोटे से मुख में ये वन बनानी पर्वत नदी उद्यान, ये तारका मंडल, ये उल्काएं, ये छायापथ, ये निहरिके कहां से आ गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा ये तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, तो व्यतनोत वैष्णवी में माया, भगवान ने अपनी माया का विस्तार किया। तब यशोदा कहती है 50 साल हो गया, चश्मे की जरूरत है, बच्चे का स्वरूप ठीक से दिखता नहीं है, ये तो हमारी निगूढ़ी आंखों की कुछ गड़बड़ी है। ये यशोदा का भाव है, माधुर्य माधुर्य। नंद महाराज जी की इस भाग्य को देख करके वाकई परीक्षित महाराज जी ने प्रश्न किया था, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, नामकरण संस्कार होता है और बाल्य लीला, उस ब्रज में घुटमन चलना, उस गोवर को लेकर के शरीर में मल देना, उस गोमूत्र में डूब जाना, ये अद्भुत रूप, ये लीला माधुरी को देख करके परीक्षित महाराज आश्चर्य में डूब जाते। नंद किम अकरोत ब्राह्मण श्रेयैव महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौ यस्याः स्तनम् हरिः। परीक्षित महाराज कहते हैं हे गुरुदेव, ये नंद महाराज जी का भाग्य का कितना बड़ा फल है, कौन सी तपस्या की थी और ये महाभाग्यवती यशोदा, इनकी तपस्या कितनी थी जो इन्होंने अपने छाती का दूध पिलाया। पपू यस्या स्तनम हरे है, बड़े आश्चर्य है मेरे मित्रों। कभी आपने सुना है कोई व्यक्ति टॉयलेट में जाता है उसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आता है, किसने सुना है? अब देखो 2 करोड़ रुपया लगा करके सनक सनातन ने टॉयलेट बनाया, उसमें जाकर के आप बाथरूम जाओगे तुम्हारा नाम आएगा क्या? आएगा। लेकिन भागवत धन्य है, हम धन्य है, भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी करने जाते थे, जिनके घर पे माखन नहीं मिलता था उसके थाली में पेशाब करके आ जाते थे, और वो मेहनादिनी वो लघु शंका आदि भागवत में लिखा गया है, इसलिए कृष्ण भगवान है। अरे भाई जिसने मूत दिया और उसके नाम भागवत में आ गया, ये है कृष्ण। यस, ऐसा कहीं है शास्त्र कहीं? मेहना देने श्री कृष्ण कहीं की लघुसन का कर देते हैं और नंद महाराज और पूरे भागवत में सुखदेव गोस्वामी परमंश जैसे गाते हैं, इसलिए कृष्ण ये उनकी विश्वलता है, ये उनकी ईशिता शक्ति है। तब परीक्षित महाराज आश्चर्य में पूछते हैं, तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये द्रोण और धरा तपस्या करके आ गए, ये बड़ी विचित्र विचित्र बात, भागवत के सिद्धांत बड़े ही दुरूह है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित, ये तो तुमने देखा कि भगवान घुटमन चल रहे हैं वहां ब्रज की विथियों में, पर तुमने कभी सुना है यशोदा ने उस घुटमन चलने वाले विश्वपति विश्वाधार को अपने रस्सी से बांध डाला है, ये माधुर्य की ये वात्सल्य रस की पराकाष्ठा है, उसी का वर्णन करने के लिए उखल बंधन लीला है। तब यशोदा कह रही है संध्या पर्यंतम अपि एतद ग्रामस्थैर अपि दामभिग्रथितैर एतर उदरस्य अवधि अधिजिज्ञासमिणीयः, मैं इसकी परिधि जानूंगी, इनका पेट कितना बड़ा है, कितना उदर बड़ा है। इति प्रौढ़वादवत्या पुत्राभिमत्या परमेश्वर बंधन उद्यमे अपरित्यक्ते सती भक्त भक्त भगवतुर मध्ये भक्त हठ एव तिष्ठेत। यशोदा ने हठ पकड़ लिया, नहीं मैं इसको बांध के ही रहूंगी। आप जानते हो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर भगवान को कभी कभी नियम बदलते देखा, कभी कभी ऐसा अद्भुत भाव होता है भगवान अपने नियम को बदल देते हैं, बहुत कुछ बदल देते हैं। ये नियम वहां काम नहीं करता, भगवान कभी नहीं बंधेंगे, लेकिन अभी ये नियम बदलता है। इसी को संकेत करते हैं कि प्रबल प्रेम, उस प्रेम प्रेम की ताकत कितनी होती है। अरे भाई जो भौंरा उस लकड़ी को छेद करने में समर्थ है पर कमल पत्ते पे बंध जाता है, निष्क्रिय भवती पंकज कोशे, वो निष्क्रिय हो जाता है प्रेम के कारण, वो बंध जाता है। इसलिए यहां चक्रवर्ती जी कहते हैं भक्त हठ एव तिष्ठेत इति अतः मातुः श्रमम आलक्ष्य मातृवत्सलो भगवान एव स्वहठम तत्याज। भगवान ने अपना हठ को परित्यक कर दिया, मां का हठ है, मां का हठ है। वही हठ, वही झंडा है, भक्त का झंडा है। तत्याजस इति स्वमातुर इति च पाठे स्वमातु कृपया इति, अपनी मां को जानकर कृपया, कृपा शक्ति सर्वशक्ति चक्रवर्तिनी परम भास्वती कृपा शक्ति रेव भगवन चित्तम नवनीतमेव विद्रुति कृत्या। भगवान की दो शक्ति में होड़ लगने लगी। जब यशोदा बांधना चाहती थी तो भगवान की इसीता शक्ति, भगवान का जो ईश्वरत्व उसके साथ विद्रोह कर रहा था, नहीं मां तुम हमें बांध नहीं सकती, हम ईश्वर है, हम अपरिसीम है, हमको कौन बांधेगा। लेकिन मां ने जब हठ पकड़ लिया, भाई के कहावत है, मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत, मान लिया तो जोर से बोलो, ठान लिया तो देखो इनके पक्ष में ठाना पड़ा भक्त। लेकिन एक सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, यहां हठ कौन कर रही है, मां कर रही है, मां कर रही है। तुम्हारा पक्ष भारी है इस प्रसंग में, तुम्हारा पक्ष भारी है। परम भास्वती कृपा शक्ति रेव भगवत चित्तम नवनीतम एव विद्रुति कृत्य। अब कृपा शक्ति जब जागने लगी, ये ईशिता शक्ति, वसीता शक्ति, काम वसीता शक्ति, ईश्वरत्व, ये सब फीका पड़ गया। मां को मां की छड़ी देख करके, अब महाराज इस बात को बड़े विनोद भाव में कहते हैं, जब मां ने बांध दिया था, बलराम जी ने आकर के देखा, मां से आकर पूछा किसने बांधा, मैंने बांधा, जानती नहीं हूं कौन है, कौन है, ये ब्रह्मांड नायक है। अच्छा तू कौन है, मैं शेषनाग अनंत हूं। मां ने उठाई छड़ी, बोले दारी के तू ब्रह्मांड नायक है और तू शेषनाग है, सब मेरे घर पर आए हो। छड़ी जैसे उठाई, अनंत भगवान भाग गए वहां से। तो बलराम जी वहां से भाग जाते हैं और थर थर कांपने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण देखा, अब मैं तो बंद पड़ा था, ये बेचारा आया था अपनी हिम्मत दिखाने के लिए, ये भी भागा। इसलिए मेरे प्रभु, प्रेम के वशीभूत सारा संसार होता है, प्रेमी इतनी ताकत है, इतनी ताकत, इसी को प्रमाणित करने के लिए इस लीला का अवतरण होता है। वेदृति कृत्य तत्र स्वयं प्रादुर्भूय पूर्वोद्भूते सत्य संकल्पात्मिका विभूता शक्ति तत्र सहिवा अंतरध्यापयामास। वो विभूता शक्ति, वो ऐश्वर्य शक्ति अंतरहित हो जाती है, तब श्री कृष्ण बंध जाते हैं। तत्र सहिवा अंतर्ध्यापयामास अत्र परिश्रम इति कृपया इति एताभ्याम द्वयंगुल न्यूनतम समाहिता भक्त निष्ठा भजनोत्था श्रांतिर तद दर्शनोत्था स्वनिष्ठा कृपा चेति द्वाभ्यामेव भगवान बद्धो भवेत ते द्वे यावन नाभूतम तावदेव द्वयंगुल न्यूनता आसित। तब आगे चक्रवर्ती कहते हैं, ये जब तक भक्त हठ नहीं करेगा, नहीं हम श्री कृष्ण को बांध के ही रहेंगे, इसी जीवन में श्री कृष्ण का साक्षात्कार करके ही रहेंगे, तब तक श्री कृष्ण अपने बस में आने वाले नहीं है। अब कहीं जाकर के पूछो, अरे वृंदावन क्यों नहीं गए, अरे भगवान की दया नहीं हुई, भगवान की दया खाक होगी तुम्हारे ऊपर। सबसे पहले तुम अपने ऊपर दया करो, पहले तो तुम ये निश्चय करो कि नहीं हम वृंदावन जाएंगे, मैं तो गोवर्धन चले जाऊं, मेरी बीर नाही मेरु माने मनमा, अरे सखी मैं तो गोवर्धन वृंदावन चली जाऊंगी, मेरा मन ये घर परिवार में मानता नहीं है। तो चक्रवर्ती इसी को ही संकेत करके कहते हैं, जब तक भक्त निष्ठा नहीं पकड़ेगा और निष्ठा के साथ परिश्रम करके थक जाएगा, भगवान सब देखते हैं, जब तक थकेंगे नहीं, जब तक हमारा अहंकार थोड़ा थोड़ा फन उठाता रहेगा, तब तक बेकार हो जाएगा, तब तक नहीं होगा। तो क्या होगा, शांति तद दर्शन होता स्वनिष्ठा कृपा चेति, तब भगवान की कृपा होती है, द्वाभ्याम एव भगवान बद्धो भवेत, ये दोनों जब एकत्रित होते हैं तो भगवान बंधन में आ जाते हैं। यावन्ना भूतम, जब तक भगवान भक्त का परिश्रम नहीं होता भगवत प्राप्ति के लिए, तावत एव दुई अंगुल न्यूनता, दो अंगुली भगवान कहते हैं तुम्हारे से एक कदम, हमारे से एक कदम, तुम आओ हम भी जाएंगे, तुम्हारा नहीं हमारा भी नहीं है। आसित तयोर उद्भूतयोस्तु बद्धो अभूतिति प्रेमण स्वबंधन प्रकारः स्वमातरी स्वयं उदाहृत भवेत इति गेयम। ये अंतिम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहते हैं चक्रवर्ती जी, अभूत इति प्रेमणा स्वबंधन प्रकार स्वमातरी स्वयं उदाहृत। भगवान अपनी माँ के पास मैं कैसे बंधूंगा, ये उपाय को अपने दृष्टांत के माध्यम से उपस्थापित करते हैं। स्वबंधन प्रकारम स्वबंधन प्रकारम प्रेमणा स्वबंधन प्रकारम स्वमातरी स्वयं उदाहृत भवेत इति ज्ञेयम्, ये जानना चाहिए। तो आइए पूर्व श्लोक में दो मिनट में इसको समाप्त करते हैं। तो यशोदा बांधती है, नमस्ते स्तु दामने स्फुरधिप्ति धामने त्वदीयोदरायथ विश्वस्य धामने। कुछ भक्त लोग ये भी टीका करते हैं दिग्दर्शन टीका के माध्यम से, राधा रानी भी वहां मजाक देखने के लिए आ गई थी, सब रस्सी दे दिए, पर राधिका की बेणी में अभी भी वो रस्सी बंधी हुई है। तो राधिका ने देखा कि जब ठाकुर जी बंधे नहीं होते तो राधिका जी ने अपनी बेणी से वो रस्सी को खोल करके देती है। माँ ने कहा पूरी रस्सी लगा दी, तेरी ये छोटी रस्सी से क्या होगा। राधा रानी ने कहा लगा करके तो देख ले, क्या होगा बाद में कहना। तो जब प्रेमी राधिका अपनी रस्सी को दे देती है, वो बेणी पे जो जुड़ा पे बंधी हुई थी रस्सी दे देती है, तब यशोदा लगाती है, भगवान बंध जाते हैं। नमस्तेस्तु दामने स्फुरधिप्ति धामने। और ये रस्सी और कुछ नहीं है, भक्ति प्रेम ये चमकती हुई रस्सी है। और सनातन गोस्वामी तो सामने मैंने पाठ किया, ये ब्रह्म ज्योति है। जैसे भगवान और भगवान की ज्योति उनके शरीर के बाहर अपने अपने दिव्य अंगों से ही विस्फुरित होती है, ऐसा ही ये रस्सी और कुछ नहीं है, ये प्रेम और ब्रह्म ज्योति ही है। नमस्ते स्तु दामने स्फुरधिप्ति धामने त्वदीयोदरायथ। आगे कहते हैं हे प्रभु, आपके पेट को आपके उदर को हम नमन करते हैं। दूसरी लाइन में त्वदीयोदरायथ कथम भूता उदर विश्वस्य धामने। हे जगदाधार, हे विश्वाश्रय, आपके उदर को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि भगवान का उदर सामान्य उदर नहीं हो सकता, ये विश्व के आधार भूमि है, ये विश्व का आधार है। त्वदीयोदरायत विश्वस्य धामने, विश्व का धाम है आपका उदर। आगे वाला क्या है, नमो राधिकाए। और उनकी प्रिया और उनकी अल्हादिनी शक्ति चित स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी को मैं नमस्कार करता हूं। त्वदीय प्रियाय, नमो राधिकाए त्वदीय प्रियाय। ये राधिका शब्द किसी धातु के अनुसार निष्पन्न नहीं हुआ, दिग्दर्शन टीका में सनातन गोस्वामी कहते हैं अतिशय प्रेम के कारण राधिका, राधिका छोटी सी बालिका प्रेम भूता है यह। नमो राधिकाए त्वदीय प्रियाए, नमो अनंत लीलाए। जब सत्यव्रत मुनि राधिका का नाम उच्चारण करते हैं, तुरंत भागवत के श्लोक उनके मानस पटल में अभिव्यक्त होता है। नूनम आराधितो कश्चित, कोई एक गोपी जो भगवान श्री कृष्ण की खूब आराधना करी, भगवान श्री कृष्ण ने उनके साथ अत्यंत गोपनीय रास विहार किया था, लेकिन सामान्य जनों में इस रास लीला का उद्घाटन करना मना है। इसलिए आगे की पंक्ति में श्री सत्यव्रत मुनि कहते हैं नमो राधिकाए त्वदीय प्रियाए नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। हे अनंत लीला विहारिन, आपके अनंत 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 लीला है, लेकिन सबसे माधुर्यमय लीला है आपके रास विहार की लीला है। चौथे लाइन में नमो अनंत लीला है, अनंत लीला करने वाले गोचारण लीला करते हैं, बछड़ों को चराते हैं, कभी माखन खाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और अंतिम उनका सर्वाकर्षक और सर्वोच्च प्रेममयी लीला है रास लीला। रास लीला नमो नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम, आप ही देव है, तुमादि देव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। हे विश्वपति, हे विश्वाधार, हे जगदाधार, हे आत्मतंत्र स्वतंत्र, हे कृष्ण, हे 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 दामोदर, आपको मैं बारंबार 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 नमन करता हूं। नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम, इस प्रकार सनातन गोस्वामी दिग्दर्शनी टीका में बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। चार पंक्ति में चार है, प्रथम में रसी को, दूसरी पंक्ति में भगवान के उदर को, तीसरी पंक्ति में उनकी अनन्य प्रिया श्री राधिका को, और चौथी पंक्ति में उनकी अनंत लीला को। इसी प्रकार दामोदर भगवान अपनी लीला के द्वारा हमारे भक्तों पर और हम पर अपनी कृपा वर्षाएं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए दामोदर भगवान की जय।